आगे है 59 से 64। दुश्मन के मुकाबले की भरपूर तैयारी कीजिए। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू सबकू, काफिर ये ख्याल न करें कि वो भाग निकले, यकीनन वाजिस नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकतवर कुव्वत की तैयारी रखो और घोड़ों के तैयार रखने की, और इससे तुम अल्लाह के दुश्मन को खौफज़दा रख सको और इनके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह इन्हें खूब जान रहा है, और जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। अगर वो सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ, टिट फॉर टैट। और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो अल्लाह तुझे काफ़ी है। इसने अपनी मदद से मोमिनों से तेरी ताईद की है, यानी तुझे उनके साथ जोड़ा है, और इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी उसी ने डाली। और ज़मीन में जो कुछ है वो अगर सारे का सारा भी तू खर्च कर डालता तो भी इनके दिल आपस में नहीं मिला सकता था। ये तो अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाल दी, वो गालिब हिकमतों वाला है। ए नबी, तुझे अल्लाह काफ़ी है इन मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। उकबा बिन आमिर से एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक तीर के सबब 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा। वो कौन सा तीर है? बनाने वाला। तीर बनाने वाले को अगर इसके बनाने में इसकी अच्छी नीयत होगी, फिर इसकी मदद करने वाला और तीर चलाने वाला। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीर अंदाजी करो, सवारी करो, और मेरे नज़दीक तीर अंदाजी महबूब है सवारी करने से। यह सुनन दारमी की रिवायत 2442। खुशी हो रही है आपको? सिर्फ तीर चलाने वाले को नहीं, बनाने और बनवाने वाले को भी फायदा है। नेकी का कोई काम करने वाला नहीं, करवाने वाला भी बराबर शरीक है। हम अमूमन उन लोगों पर रश करते रह जाते हैं जो हमें सामने दिखते हैं। इस वक्त हो सकता है किसी को मेरे पर रश आ रहा हो। आप कुरान पढ़ा रही हैं, आप कितना नेकी का काम करती हैं, और जो स्टूडेंट्स और साथी जो कुछ लिखते बोलते भेजते हैं उसको पढ़ कर और खौफ आता है। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ मैं रिस्क पे हूँ। ये जगह इतनी खतरनाक है, मेरी एक टंग स्लिप अब तो मिनटों में हजारों में और कुछ दिनों महीनों में लाखों में बदल जाती है। फिगर्स भी आप देख लेते हैं, मल्टीप्लाई जैसे नेकियां होती है ना इधर बैठ के, वैसे गुनाह भी होते हैं। इसके बरक्स जो पीछे बैठे हैं, जो बैक एंड पे हैं, जो इस वक्त भी पूरी ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं, जो लिखने में मदद करते हैं, जो स्लाइड्स को बनाने में, किसी ने मुझे कहा कि ये सब कौन करता है? मैंने कहा कोई एक हो तो मैं नाम बताऊं। ये कोई एक का काम लगता है आपको? ये कितनों का काम है, ये एक दिन का भी काम नहीं है। तो क्या उनको अजर नहीं मिलेगा? ये जिन्होंने अपना ये हॉल खोला, जिनका ये घर इस्तेमाल हो रहा है, जिनका ये माइक, ये एसी, मेरे लिए 10-15 तो एसी लगे हुए हैं इधर आपके लिए, तो आपको लगता है कि इनका अजर कम है? कम नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरी नीयत का खोट मेरे अजर को तो खत्म कर देगा, आपने जिस मोहब्बत से लगाया आपको अजर मिल जाएगा। तो ये खतरनाक जगह है, इसलिए आपको अल्लाह ने जो खूबी दी है ना वो काम कीजिए। पहुंचाना मकसद है ना, अपने आप को दिखाना या नुमाया करना तो मकसद नहीं। लोग कहते हैं हम खुद नहीं पढ़ाएंगे तो फिर अजर नहीं होगा। फिर देखें ना, रमजान में तो इतना नेकियों का मौका होता है, हम कैसे ना करें? 100 दफा करें। पैगाम पहुंचाना है, कैसे बताऊं? मैंने जाके बताया, लोगों ने समझा ही नहीं। कल भी मेरे से किसी ने कोई मसला पूछा तो मैंने उनको ये बताया कि आपको तो बात करनी भी नहीं आती होगी, आपने क्यों बात की? झगड़ा तो लाजमी था। देखिए ना, मैं आपको जानती हूँ, और मैं कोई बात जहाँ करती हूँ एक लम्हे के लिए जरूर शैतान डालेगा कि मैंने आपकी बात की है। हालांकि यकीन कीजिए, यहाँ बैठ कर वक्त ही नहीं होता किसी को याद किया जाए। और अगर मेरी जगह यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही होती, आप पिछले साल का दौरे कुरान सुनते और उसमें मैं कोई मिसाल देती तो आपके जहन में आना था कि आपकी बात है, क्योंकि मेरा आपसे इंटरेक्शन ही नहीं है। ये बात है सिक्योर। साहबा ने खुद को सिक्योर रखा। गलतियां करने से बेहतर है हम वहां खड़े हो जाएं जहां गलती किसी और की हो ना हो, हम उससे बचे हों। फिर उसके बाद आप देखिए कि इस हिस्से में जो एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपने पढ़ी है और सुनी है, हो सकता है तर्जमा सुनने में आप इतना ज़्यादा ना समझते हो, लेकिन एक रूल है कि इस्लाम असलहे या हथियारों के इस्तेमाल से ज़्यादा उसके इजहार पे यकीन रखता है। 23 मार्च को परेड होती है, 14 अगस्त को होती है, कभी 6 सितंबर को भी होती थी, मुझे नहीं पता वो होती है कि नहीं। वो जो दिखाया जाता है ना फौजों को, कौमों को, उससे दुश्मन ज़्यादा डरता है। न्यूक्लियर बम बना दिया, कभी इसको शीशे के केस में रख के दिखा दो ना, दुश्मनों को तो कांपने लगेंगे। आपको एटम बम चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि मुसलमान हथियार ना बनाए, नो वॉर पैक्ट, नो वेपन्स पैक्ट, ये रॉन्ग है। हाथ में डंडा हो ना तो कहते हैं फिर कुत्ता पीछे नहीं आता, उसको बताया कि जरा पीछे पड़ा तो डंडा मुझ पे पड़ना है। तो इस्लाम बिल्कुल आपको इजाजत देता है आप हथियार रखें, आप पूरी तैयारी करें, मरूब करें। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और हरीफ को मरूब कीजिए, और ये दीन में भी होगा, ताकि वो आपके ऊपर हमला करने की जरूरत ना करे। और इस्लाम वक्त के मेयार के मुताबिक अपने को ताकतवर बनाता है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हमला करने से ज्यादा दुश्मन के दिल पे रोब डालिए कि वो आपके इस्लाम से मरूब हो और आ जाए। आज भी आप देखिए कि कितना ही इससे फायदा होता है। ये चीज़ें तो वक्त लेना चाहती हैं, इसलिए बस इतना कह देती हूँ कि इस्लाम की फतह का राज जंगी मुकाबलों में नहीं है, सिर्फ असूलों की तबलीग में। आप आज के पारे से ये ना सोचिए कि सिर्फ सहाबा ने जंगें लड़ी इसलिए वो गाजी और वो बहुत पुरस्कार थे। असूलों की तबलीग, फतह की पेशकश करता है दुश्मन, बिस्मिल्लाह करो, अंदेशा तो है कि नुकसान ना दे दे, लेकिन ये पॉसिबल भी है नहीं भी है। लेकिन जंग ना करने से जो पुरअमन फिजा कायम होगी ना, इसमें इस्लाम दावत का पैगाम देगा। जैसे सुलह हदैबिया के बाद 2 साल में बहुत दावत हुई थी, और एक जुमला लिखिए, इस्लाम खुद अपनी ज़ात में सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह और आखरत पर ईमान किसी भी ग्रोह में आ जाए उसको वेपन्स की जरूरत ही नहीं रहती। मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। मुस्लिम वेपन इज इस्लाम, ईमान, अकीदा, आखरत, सब नफसियाती बीमारियां निकल जाती हैं, फिर ना इत्तफाकी और झगड़े भी नहीं होते, लोग जुड़ के एक बनते हैं, और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। आपस में जुड़ा हुआ गिरोह अगर तादाद में थोड़ा भी क्यों ना हो, तब भी वो अपने से ज्यादा तादाद रखने वाले गिरोह पर गालिब आएगा। ये है इनायतों का पैगाम। और सबसे मुश्किल चीज पता क्या है? दुश्मन पे कब्जा पाना नहीं, बाहमी इत्तफाक सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। किसी गिरोह की अल्लाह से मदद पाने की पहचान क्या है कि उसके लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज इनके इस इत्तेहाद को ना तोड़े तो अल्लफ बैन कुलूबिकुम। इसीलिए अल्लाह ताला ने उल्फत पैदा कर दी दिलों में और मोहब्बत डाल दी। आपको मुझे इस सारे को सुनकर क्या करना है? नंबर एक, दीन के दिफा की जंगी तैयारियां करनी है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, सुलह पे आमादा रहना है, अल्लाह वालों से अखुवत का रिश्ता कायम करना है, और अल्लाह के अहकामात को भी मानना है और नबी की पैरवी को भी मानना है। और आगे आयत 65 से 69 में रुकू नंबर 9, दीने इस्लाम के दिफा के लिए तैयार रहिए। या यूहन्नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल, ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाइए। जरा रुकिए, ये कौन किसको कह रहा है? अल्लाह अपने रसूल को कह रहा है। आप और मैं इस पे क्या कमेंट देंगे? अगर तुम में 20-20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1,000 पर गालिब रहेंगे। क्या रेशियो है? 1:10 का। इस वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में नातवानी है, यानी कमजोर हो तुम। बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1,000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2,000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब क्या हो गया भाई, एक के मुकाबले में 2 का रेशो रह गया सिर्फ, यानी स्टैंडर्ड लो कर दिया गया। अच्छा, अब अल्लाह तुमसे बोझ हल्का करता है, यानी इस जुमले पे आप गौर करें ना तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए, जब तक के मुल्क में अच्छी तरह खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो, और अल्लाह का इरादा आखरत का है, और अल्लाह जोरावर बाहिकमत है। अगर पहले ही अल्लाह की तरफ से ये बात ना लिखी होती तो जो कुछ तुमने ले लिया इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सजा होती। बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है, खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है। क्या खूबसूरत बात है। आप देखिए कि नायात के साथ अगर आप देखें तो हज़रत जाबिर से एक रिवायत अल्लाह के नबी के तरफ से, एक शख्स ने आके कहा, अल्लाह के रसूल मैं कहाँ होऊंगा अगर मारा जाऊँ? आपने फरमाया जन्नत में। ये सुनकर इसने चंद खजूरें जो इसके हाथ में थीं खाने के लिए फेंक दी और लड़ा, यहाँ तक कि शहीद हो गए। और आप पता ये साहबी कौन थे? उमैर बिन हमाम, गज़वे उहद का जिक्र है, सही मुस्लिम की रिवायत 4913। क्योंकि उनको जन्नत में जाने की जल्दी थी। हम जाना चाहते लेकिन कहते ना अभी नहीं, अभी दुनिया को जन्नत बना ले। साहब अमीर, हमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है, उनकी जन्नत उधर थी इसलिए उधर जाते थे, हमने अभी इधर की दुनिया को जन्नत बनाना है इसलिए अभी यहाँ ही नहीं पूरी हो रही, हमारा अभी यहाँ का ही मामला नहीं सीधा और हमने अगला मामला कहाँ से लेना है। इसी तरह 67 की शान नज़ुल में एक वाक़ा इब्ने कसीर में है, अल्लाह के नबी ने पूछा कि इन कैदियों के बारे में तुम क्या कहते हो? हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये आपकी कौम के लोग हैं, आप वाले हैं, इन्हें जिंदा छोड़ा जाए, इनसे तौबा करा ली जाए, अजब के कल इन पर मेहरबानी हो। अबू बकर की राय क्या थी कि मर गए फिर तो ख़त्म हो गया मामला, तो जिंदा रहेंगे तो इस्लाम कबूल करेंगे। हज़रत उमर से आपने पूछा, आपने कहा, अल्लाह के नबी, ये आपको जुटलाने वाले, आपको निकाल देने वाले, हुक्म दीजिए कि इनकी गर्दनें मारी जाएं। क्या पता चला, एक ही बात पे दो सहाबा की मुख्तलिफ सोच, अब किसको गलत कहेंगे, अब किसको सही कहेंगे, दोनों अपनी अपनी शाकिला के अतबार से दुरुस्त है। आज भी यही है। इख्तलाफ कभी सुना आपने अबू बकर और उमर में? झगड़ा हुआ, लड़ाइयाँ हुई, लेग पुलिंग हुई, मैं नहीं चल सकता अबू बकर के साथ, मैं उमर के साथ नहीं जाऊंगा, उमर है तो मैं नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, जब उमर चले जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, नेवर एंड नेवर। ये तवल्लफ बैना कुलूबिकुम। तो आप लिखिए कि इस हिस्से में अल्लाह ने अहले ईमान की तादाद थोड़ी होने के बावजूद गैर अहले ईमान पर गलबे की वजूहात में क्या बताएं कि ईमान वालों में फिक होती है और गैर मोमिन फिक से दूर होता है। और फिक पता क्या? इधर बसीरत और शऊर जो ईमान के बाद एक बंदे को हासिल होता है। याद रखिए कि अल्लाह पर ईमान किसी इंसान के लिए बिल्कुल वही मानी रखता है जो अंधेरे कमरे में बिजली के बल्ब का जल जाना, बल्ब पूरे कमरे को इस तरह रोशन कर देता है कि इसकी हर चीज़ वाज़े तौर पे दिखाई देने लगती है। ये तजुर्बा तो आप रोज़ रात को करते हैं, कई दफ़ा करते होंगे, कमरे में जाते होंगे, लाइट जलाते होंगे, फिर बंद करते होंगे। इस तरह ईमान का बल्ब जब किसी के अंदर जलता है ना, तो उसको एक रब्बानी शऊर हासिल होता है, जिसके बाद वो तमाम हकीकतों को इनकी असल सूरत में देखने लगता है। हमें आज असल सूरत नहीं दिख रही जिसकी वजह से हम गलत फैसले करते हैं। याद रखिए कि जब ईमान का बल्ब अंदर चलता है ना, तो इंसान सबसे पहले तो ज़िंदगी और मौत की हकीकत समझता है। लिखे पॉइंट्स, ईमान के बल्ब के जलते ही ज़िंदगी और मौत की हकीकत समझ आने लगती है, बंदे को समझ आ जाता है कि असल दुनिया ये नहीं है वो है, यानी हयाते दुनिया असल नहीं, हयाते आखिरा असल है। फिर अगला एक असर आता है बंदे पे कि ये चीज़ इसको बेहद तक निडर बना देती है, कावट नहीं रहता, लेथार्जिक नहीं रहता। फिर वो मौत को इस नज़र से देखता है कि वो इसके लिए जन्नत में दाखिले का दरवाज़ा है। जुमला बोलो, मौत जन्नत में दाखिले का दरवाज़ा है, क्योंकि इससे गुजरे बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते। मोमिन शहादत को जन्नत का मुख्तसर रास्ता समझता है और फिर अल्लाह की राह में जान देना इसके लिए मतलूब चीज़ बन जाता है, जबकि गैर मोमिन की जन्नत इसी दुनिया में मौजूद है। वो जिंदा रहना चाहता है ताकि अपनी इस दुनिया की जन्नत से लुत्फ़ानंदोज़ हो। गैर मोमिन कौमी शऊर के तहत लड़ता है और मोमिन जन्नती शऊर के तहत लड़ता है। और जिसको शऊर है वो और जिसको शऊर नहीं है वो दोनों कभी एक जैसे नहीं होंगे। जिसको शऊर नहीं है वो कभी बेजिगरी से नहीं लड़ सकता। अभी सुना आपने, तलहा ने इतने जख्म खाए हाथ पे, छलनी हो गया जैसे आप छान लें उसमें पानी। ये दर्द सहने का शऊर इस सोच से आता है जो इन आयतों में हम पढ़े। आपको समझ आ गया होगा 10 पारों के बाद वन लाइनर आंसर, हमारा मसला क्या है? ईमान ही असली नहीं। जैसे हर चीज़ नकली है ना हमारे पास, खाने की चीज़ें नकली हैं और जाली हैं और 2 नंबर और कपड़ों में रेप्लिका और जालसाजी, मिर्चों में भी वो कुछ ईंटों का चूरा मिला दें, काली मिर्चों में वो पता नहीं चनों के छिलके डाल दें, हमारे ईमान में भी खोट है, असली नहीं है। क्योंकि सच्चा मोमिन अल्लाह से डरने वाला, फिक्रे आखिरत रखने वाला। जब ये दो चीज़ें सीधी होती है ना, तो मनफी मुसबत में आ जाता है, पॉजिटिव थिंकर हो जाता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, फिर जिद, नफरत, तासुब, इंतकाम, घमंड जैसी चीज़ों से वो बहुत ऊपर चला जाता है। आप देखिए, गुब्बारे में आप क्या हवा भरते हैं ना, तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। ईमान की हवा जब भरती है ना, तो आप इस ज़मीन पे नहीं फिरते, आप आगे वाली दुनिया के राही होते हैं। जो दूसरा है वो तो ज़मीन को आखला दाएगा अर्थ, कल के बारे में पढ़ के आए हैं पर 8 में, ज़मीन से झुका होता है। मोमिन पॉजिटिव थिंकर, काफिर या गैर मोमिन कह लीजिए, वो नेगेटिव थिंकर होता है। मोमिन कबूल करने वाला होता है, और गैर मोमिन जो होता है वो चीज़ को रिजेक्ट करने वाला होता है। और आप कह सकते हैं कि मोमिन के दिल में अल्लाह के साथ बंदों की भी मोहब्बत होती है, और गैर मोमिन इंसानों का भी दुश्मन और अल्लाह को नहीं मानता। मोमिन का दिल बड़ा होता है, वुसअत कल्बी, और दूसरा शख्स तंग दिल, खोटा। अल्लाह ताला ने यहाँ जो रेशो प्रोपोर्शन भी कम किया ना, पहले दौर में जब ईमान ज्यादा था ना, तो एक मुसलमान के मुकाबले में 10 काफिर भी होंगे ना, तो भी वो मैदाने जंग नहीं छोड़ेगा, ये रूल था। अब अल्लाह कहते हैं एक के मुकाबले में दो, तो इतना ही बड़ा, और आज तो मेरा अल्लाह एक के मुकाबले में दो नहीं, एक भी नहीं, हमने तो पीठे फेरी हुई है। अल्लाह ये चाहते हैं मैदाने जंग नहीं छोड़ोगे। और ये जो बदर के कैदियों के किस्से में सहाबा का जो सारा रोना धोना, ये क्या बताता है कि एक ही बात में दो लोगों की राय मुख्तलिफ होना इस बात की अलामत नहीं कि वो खरे या खोटे हैं। असल में दिल फर्क होते हैं ना। अबू बकर का दिल रकीक था और उनकी समझ दूरस थी। उमर फारूक और साद बिन माज दोनों ने कहा था कि इनसे ले लीजिए पैसे, इस्लाम को पैसों की जरूरत है। अबू बकर ने कहा नहीं, इनको छोड़ दो, ये मुसलमान हो जाएंगे। उमर ने कहा नहीं, इनके दिमागों में इस्लाम और आपकी नफरत है, ये आपके लिए नुकसान देंगे। और इसमें राय किसकी दुरुस्त थी? उमर की दुरुस्त थी। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर की राय से इंक्लाइंट थे, क्योंकि आप भी नरम दिल थे। और जब ये तबसरा उतरा तो रो रो के बुरा हाल था। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने अबू बकर को देखा, वो रो रहे थे, मैंने भी उनको देख के रोना शुरू कर दिया। साहबा की कोई एक बात कुरान से जरा सी हटती थी, वो रोते थे। हमारे पास हजारों ऐसी बातें और हमें रोना फिर कोई नहीं आता। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें समझ दे, फिक दे, और इन सारे किस्सों में जो हमारे लिए सबक छुपे हुए हैं उनको देखिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी से दुश्मनी और बदले के नाम पर उसको छोड़ता या पकड़ता नहीं है। आप देखिए ना कि कैदियों को अगर छोड़ दिया जाए इसी तरह जैसे वो छोड़ सकते हैं जाते थे, तो वो इंतकाम कल लेकर फिर दोबारा उनको आ जाएगा मैदान जंग में, आग में जलेंगे। दूसरी सूरत है कि उनको रखो, उनको इस्लाम सिखाओ, वो थोड़ा समझें पढ़ें, ताकि कल वो इस्लाम के साथी बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले में अल्लाह ताला ने ये किया। और आपको पता किन्हीं बदर के कैदियों में से हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे, वो इसी ज़माने कैद में मुसलमान हो गए थे, और बाद में उन्होंने इसका इज़हार किया था। तो मुसलमान तो इतने खूबसूरत किरदार के होते थे कि कोई उनके पास कैदी भी बन के आता था ना, तो मुसलमान बन के लौटता था। यमामा के हाकिम सुमामा का कबूल इस्लाम पढ़ ले, मैदान जंग से कैदी बनकर आए थे मुसलमानों के पास, अल्लाह के नबी ने उनको बड़ी इज्जत के साथ मसनवी में रखा, उनके हाथों की जो वो थी ना डोरियाँ वो भी कटवा दी, और आते जाते पूछते सुमामा क्या हाल है, तो नफरत से भरा हुआ दिल था, देखते भी नहीं थे आपकी तरफ, कहते थे तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है, अगर अच्छा करोगे तो मैं बड़ा एहसान मंद हूँ, ये वो अच्छी बात है कि उसने। जब अल्लाह के नबी ने तीसरे दिन उसको छुड़वा दिया, तो बाहर गए, गुसल किया और वापस आके कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जब तक कैदी थे दूर थे, जब आज़ाद किया तो हमेशा के लिए कैदी बन गए। कहा अल्लाह के नबी सिर्फ इन चंद दिन में आपके और साहबा के अमल को देख के इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई, हमारे पास कोई रहकर इस्लाम से मोहब्बत करेगा? हमारे इस मुल्क में आकर कोई सच्चा मुसलमान बन जाएगा? पहले तो उसकी जेब कटेगी, फिर उसको इंग्लिश बोलता देखकर टैक्सी वाले ने दुगने पैसे लेने, फिर वो रबी सेंटर में चली जाएगी, बाजी तो सबको छोड़ के उसको डील करना है क्योंकि उसे डॉलर मिलने हैं। हम जब इस सफ़ा बक्सन आए ना, तो एयरपोर्ट पे एक बंदा खुद ही सामान लेके चल पड़ा, करते कराते जॉइंट पे खुलासा निकला, जब उसको कुछ पैसे दिए, पाकिस्तानी थे, हमारे पास तो कुछ हम हाथ में इस तरह नहीं थे, तो मेरे भाई आए थे तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, कहेंगे ये नहीं लेने डॉलर लेने। आप ज़रा सोचिए, जहाँ के भिखारी इतने नकदरे हो जाएं, उसे फेंक दिए नोट, कह रहे मुझे वो दें, मुझे बाहर के पैसे चाहिए, ज़रा सोचिए तो सही। बहरहाल कितना कुदर सहेंगे हम इस वक्त के अंदर, अमल के नुक्ते नोट कीजिए, अल्लाह की रज़ा वाले काम ले लीजिएगा, ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اور غلبہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے، اور دنیا کے ساز و سامان میں کھو کر اپنی آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔